ये BBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरतेहाल के बारे में खुसूसी प्रोग्राम नीम रोज। ये प्रोग्राम आप हर रोज इसी वक्त शॉर्ट वेव पर 19 मीटर बैंड पर 15,310 किलोहर्ट्ज़ और 22 मीटर बैंड पर 13,650 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकेंगे। ये प्रोग्राम रेडियो के अलावा हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी नशर किया जाता है।
जुमेरात 19 सितंबर जम्मू और कश्मीर की खबरों के खुसूसी प्रोग्राम नीम रोज के साथ उबैद मलिक का सलाम। इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर के नौजवान पाबंदियों और कदगनों से परेशान, दिल्ली में मुकीम एक कश्मीरी नौजवान बोले,
अब हमें कोई ऐसा सलूशन इतना ढूंढना है कि जिससे कश्मीर का मसला सच में हल होगा, तो अब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता।
तफसील आलमी खबरों के बाद
नीम रोज में खबरें सुनिए सारा अतीक से। पाकिस्तान ने इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर की सूरत हाल और इंडिया के रवैये को वजह बनाते हुए इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त ना देने का फैसला किया है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक वीडियो पैगाम में बताया कि इंडिया से दरख्वास्त आई थी जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जर्मनी के दौरे के लिए फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त तलब की गई थी। पाकिस्तानी वजीर खारजा का कहना था कि उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर को इस फैसले से आगाह कर दिया है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि इंडियन आइन के आर्टिकल 370 की बहाली और इंडिया के जेर इंतज़ाम कश्मीर से कर्फ्यू उठाए जाने तक इंडिया से मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम से वादा करके जा रहा हूं कि मैं इस तरह कश्मीर का केस अक्वामे मुत्तहिदा में पेश करूंगा, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया। एक सवाल के जवाब में वजीर आजम इमरान खान ने कहा, इस वक्त अगर कोई पाकिस्तानी लड़ने के लिए इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर गया तो ये कश्मीरियों से दुश्मनी होगी, क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का मौका मिल जाएगा। अमरीका के बाद सऊदी अरब ने भी ईरान पर बराह रास्त इसकी तेल की तनसीबात पर हमलों का इल्ज़ाम आयद किया है। सऊदी वजारत दिफा के हुकाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों के मलबे की नुमाइश की और दावा किया कि इससे साबित होता है कि तेल की तनसीबात पर होने वाले हमले में ईरान मुलव्वस है। दूसरी जानब अमरीका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमरीका हालिया हमलों के बाद सऊदी अरब के हक के दिफा की हिमायत करता है। अफगानिस्तान के हुकाम के मुताबिक जनूबी सूबे ज़ुबुल में एक कार बम हमले से 10 अफराद हलाक जबकि 100 के करीब जख्मी हो गए हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है।
इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में इंडियन हुकूमत की जानब से खसूसी हैसियत को ख़त्म किए जाने के बाद से हालात को मामूल पर लाने के लिए इंडिया की हुकूमत कश्मीर में मुतअद्दिद मंसूबों का संगे बुनियाद रख रही है। ये मंसूबे कौन से हैं, तफसील बता रहे हैं श्रीनगर से BBC के नामानिगार रियाज मसरूर।
जो कल से डेवलपमेंट्स हुई हैं गवर्नर के ऑफिस से लेकर पुलिस सरबरा दिलबाग सिंह के ऑफिस तक, उससे ये निकल के सामने आता है कि 3 नकाती फार्मूला है, यानी जिसके तहत कश्मीर में हालात को बहाल करने की कोशिश की जाएगी। उसमें सबसे पहला ये है कि बड़े पैमाने पे सरकारी नौकरियां फराहम की जाएंगी, लेकिन ये नौकरियां बेशतर आर्म्ड फोर्सेज में होंगी और इसकी बाकायदा एक मुहिम कल से शुरू होने जा रही है कि आर्मी में 2000 मकामी नौजवानों को भर्ती किया जाएगा पहले फेज में। तो ये नौकरियां जो है फराहम करने के पीछे जो सोच है वो ये बताई जा रही है हुकूमत की तरफ से कि नौजवान यहाँ बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं और उन्हें मुनासिब मौके नहीं मिल रहे हैं। और दूसरा जो फार्मूला है वो है बुनियादी सहूलत फराहम करने का। उसमें सबसे बड़ा मसला यहाँ सर्दियों में ज्यादा वो तंग करता है, वो है बिजली की फराहमी। आज से ही एक मुहिम का आगाज किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अनकरीब कश्मीर में 24 घंटे बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और इसके लिए कल ही मरकजी जो वजीर बिजली है वो आए थे और गवर्नर के हमराह उन्होंने 10,000 करोड़ की मालियत के कई बिजली प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा और कहा गया ये कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पे उन्हें मुकम्मल किया जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में जो है एक सन्नती तरक्की का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाने में सबसे बड़ी रुकावट जो बताई जाती है वो बिजली की फराहमी है। और तीसरा जो ये है वो ये बात डीजीपी की तरफ से आई है, डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह की तरफ से, वो कहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में बेचैनी फैला रहा है और इसे नाकाम करने के लिए हर उस शख्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो लोगों को बाहर निकलने से डराता है या दुकानदारों को दुकान खोलने से डराता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अप्लाई करने से रोकता है। तो इसके लिए एक सिक्योरिटी पॉलिसी तरतीब दी गई है जिसकी तफसील डीजीपी ने यूं बयान की। उन्होंने कहा कि इन 45 दिनों के दौरान 24 अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार किया गया है और उनका कहना था कि इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो खासा मजबूत कर दिया गया है और गश्त बढ़ा दी गई है और हर एक मोहल्ले हर बाजार में इजाफी फोर्सेस को तैनात किया जा रहा है ताकि कोई भी शख्स दुकानदारों को दुकान खोलने पर एतराज न करे, उन्हें डराए धमकाए नहीं।
श्रीनगर से नामा निगार रियाज मसरूर। इंडिया के जेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर में बेशतर इलाकों में पाबंदियों का सिलसिला जारी है। दूसरे इलाकों में रहने वाले कश्मीरी लोग अपने प्यारों से रابطہ नहीं कर पा रहे। इन लोगों ने बीबीसी के फेसबुक सफ़े पर मैसेजेस भेजे।
मैं अब्दुल मजीद दुबई मुत्तहिदा अरब इमारात से बात कर रहा हूँ। मैं रावलपोरा बीरवा में रहता हूँ। मुझे पिछले 1.5 महीने से अपनी फैमिली के साथ कोई रابطہ नहीं है। मैं उनके मामले में बहुत परेशान हूँ। अगर वो मेरी बात सुन रहे थे, मैं उनसे ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह करे आप सब लोग ठीक हो।
मैं इंडिया से रियासत कर्नाटक मैसूर से मोहम्मद मुजम्मिल बात कर रहा हूँ। मेरा ये मैसेज श्रीनगर में मौजूद मेरी बहुत ही अजीज़ दोस्त शीरीन के लिए है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक हो, आपके घर वाले सब ठीक हैं और बेंगलोर में जो भी कश्मीरी बंदे जॉब कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं उनके बारे में सारे कश्मीर वाले कोई भी किसी तरह की फिक्र ना करें, वो लोग यहाँ पे सेफ हैं।
मैं ताबिश लोन जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लोन हरे का रहने वाला हूँ। मैं अपने घर वालों तक यही पैगाम पूछना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से यही दुआ है कि आप भी ठीक होंगे। और मेरे साथ मेरा दोस्त मुश्ताक अहमद भट्ट उसी इलाके का रहने वाला है। मैं उनके घर वालों तक भी यही पैगाम पूछना चाहता हूँ कि वो भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह से दुआ है कि उनके घर वाले भी ठीक होंगे।
मैं सैयद करार हाशमी डब गांदरबल से हूं और अभी पढ़ाई कर रहा हूं कुम शहर में जो कि ईरान में है। 40 रोज हो चुके हैं हमें घर वालों से कोई राबता नहीं है, लेकिन बहुत शुक्रगुजार है बीबीसी उर्दू का जिन्होंने ये बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है सब कश्मीरियों को जो बात करना चाहते हैं कश्मीर में। एक मैसेज घर वालों को मैं दूंगा कि बिल्कुल हम ठीक ठाक से है, भला 40 रोज हो गए कोई राबता नहीं आप लोगों से, लेकिन हम बिल्कुल ठीक से है। बच्चे अली रजा मासूमा सब ठीक से है और जब तक लैंडलाइन और बाकी इंटरनेट बहाल नहीं होगा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम ठीक ठाक से है।
मेरा नाम फहीम अल इस्लाम है और मैं अच्छन पुलवामा में रहता हूँ। मैं अपने घर वालों को ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में अल्लाह के फजल करम से बाखैर और आफियत हूँ।
दुनिया में कहीं से भी जम्मू और कश्मीर में अपने अजीजों से राब्ते के लिए बीबीसी उर्दू के फेसबुक पेज पर अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाएं। हम इसे बीबीसी की रेडियो प्रोग्राम नीम रोज और सैरबीन में शामिल करेंगे। ये पैगाम टेलीफोन पर रिकॉर्ड करवाने के लिए डायल करें 0800-222-75। पाकिस्तान के बाहर से कॉल करने के लिए इस नंबर से पहले 0092 का इजाफा कीजिए। पैगाम रिकॉर्ड करवाते वक्त अपना मुख्तसर तारुफ जरूर शामिल करें।
बीबीसी उर्दू पर एक खबर आगरा की सेंट्रल जेल जहां दर्जनों कश्मीरी कैद हैं के उन्वान से बीबीसी हिंदी के नामा निगार विनीत खरे की एक खबर मौजूद है जिसे पेश कर रही हैं हमारे लिए नामा निगार सहर बलोच।
कश्मीर से आने वाले दर्जन भर मर्द और खवातीन इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश के शहर आगरा की सेंट्रल जेल के मरकजी दरवाजे के बाहर एक बड़े वेटिंग रूम में मौजूद थे। गर्मी और हब से इनका बुरा हाल था, मगर वो अपने घरों से सैकड़ों मील दूर इस जेल में कैद अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के मुंतजर थे। ये वो कैदी हैं जो इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर को खसूसी आईनी हैसियत देने वाली आईनी शिक के खात्मे के बाद हिरासत में लिए गए और फिर रियासत से बाहर मुख्तलिफ जेलों में कैद कर दिए गए। आगरा की सख्त सिक्योरिटी वाली सेंट्रल जेल में 80 से जायद कश्मीरी अफराद को रखा गया है। ताहम जेल के हुक्काम इस मौजू पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। एक दाढ़ी वाले शख्स ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि बहुत गर्मी है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मुझसे मेरा नाम न पूछिए, हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। वो श्रीनगर से 30 किलोमीटर दूर पुलवामा के रिहायशी हैं और अपने भाई से मिलने के इंतजार में बैठे थे। उन्होंने बताया कि उनके भाई को 4 अगस्त को रात गए उठा लिया गया था। وادی کشمیر کے علاقے کلگام کے رہائشی ایک مزدور عبدالغنی ریل گاڑی سے دلی تک آئے اور وہاں سے بس کے ذریعے آگرہ تک پہنچے۔ ان کا بیٹا اور بھتیجا جیل میں بند ہیں۔ وہ پریشان تھے کیونکہ وہ کشمیر کے اہلکاروں سے اہم دستاویزات اپنے ساتھ نہیں لے کر آئے۔ جیل کے انتظامیہ سے گزارش کرنے پر انہیں ان کے رشتے دار سے ملاقات کے لیے 20 منٹ کا وقت دیا گیا۔
انڈیا اور پاکستان کے درمیان مسئلہ کشمیر پر انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے نوجوان اس سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کے خیال میں آج کے اس دور میں اس کا ممکنہ کیا حل ہو سکتا ہے، یہ اور چند دیگر سوال میں نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے 25 سالہ نوجوان جنید اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے 28 سالہ عمیر سے پوچھے۔
میں تقریباً 25 سال کا ہوں اور آج تک کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے، جبکہ پہلے لگتا تھا کہ تبدیلی آئے گی، بٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بس اپنے دوست کھو بیٹھا ہوں، تو ان کے بعد میں بھی کافی زیادہ مطلب اپنی لائف میں تنگ آ گیا تھا، تو ابھی تک کوئی بھی ویسی تبدیلی نہیں آئی، بس ہمیشہ ظلم ہی دیکھا ہے۔
جیسے آپ کے بزرگ، آپ کے والدین یا وہاں کے لوگ جو بزرگ تھے وہ اس مسئلے کا حل چاہتے تھے، کیا آپ کی نظر میں بھی مسئلہ کشمیر کا وہی حل ہے یا کوئی اور راستہ بھی ہے؟
ہمارے جو پیرنٹس تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، اس کا جو حل ہے وہ دوسرے طریقے سے چاہتے تھے، بٹ میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں، ابھی کافی زیادہ تنگ آئے ہیں، ہمیں اتنا ظلم ہوتا ہے وہاں پہ، تو اب ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسے مطلب ان کو بتائے کہ آ کے پاکستان سے بات کرے، آ کے کشمیر سے بات کرے۔ اب ہمیں کوئی ایسا سولوشن اس کا ڈھونڈنا ہے کہ جس سے کشمیر کا مسئلہ سچ میں حل ہوگا، تو اب ہم سے اور برداشت نہیں ہو سکتا، اب ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو۔
میرا نام عمیر پرویز خان ہے اور میری عمر 28 سال ہے۔ میں ابھی ترکی سلجوک یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اور ویسے میرا تعلق آزاد کشمیر راولا کوٹ سے ہے۔ جو بنیادی اگر اس کا دیر پا حل کوئی بھی آپ چاہتے ہیں، وہ ون مین ون ووٹ کے ذریعے وہ اپنے مرضی کے مطابق ووٹ ڈال کے اگر کوئی اپنا مستقبل کا فیصلہ کرے گا تو وہ یقیناً دیر پا ہوگا۔ بھارت اور پاکستان کا وجود خود رائٹ ٹو سیلف ڈیٹرمنیشن کی بنیاد پر کھڑا ہے، تو پھر کشمیر کا مسئلہ بھی، اس کا بھی دیر پا حل رائٹ ٹو سیلف ڈیٹرمنیشن یونائیٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق ہی ہوگا۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو کشمیری نوجوان ہے اس کو امید پاکستان کے سیاسی رہنماؤں سے ہے، انڈیا کے سیاسی رہنماؤں سے ہے، کشمیری رہنماؤں سے ہے یا بین الاقوامی دنیا سے ہے؟
میں آپ کو شیورلی بول رہا ہوں، یہ میری صرف اوپینین نہیں ہے، یہ ہر کسی کی ہوگی۔ کشمیر میں اب دہلی میں ہوں میں، 5 بار کشمیر میں نے وزٹ کیا ہے 5 اگست سے، تو وہاں پہ ہر کسی کے منہ سے یہی بات نکلتی ہے، اگر کچھ کرے گا تو پاکستان کرے گا، اور کسی بھی ملک سے امید نہیں رکھی ہے اور نہ کبھی رکھی تھی۔ اس سے پہلے بہت سارے سپنے دکھائے گئے، آج یو این میں وہ ہوگا، امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ وہ کرے گا، یہ کرے گا، جبکہ میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آج یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہاں پہ حالات کافی زیادہ خراب ہوں گے، وہاں پہ ملٹنسی کافی زیادہ بڑھ جائے گی، وہاں کا جو یوتھ ہے ان کی ابھی وہ سوچ جو ہے وہ بدل چکی ہے، وہ ان کو بس صرف ایک سولوشن دکھتا ہے، اب ان کو بس لگتا ہے کہ اس کا سولوشن صرف گن ہے۔
دیکھیں، جو کشمیری نوجوان ہے وہ 47 سے لے کے آج تک پاکستان کی طرف ضرور دیکھتا آیا ہے، لیکن سب سے بڑا جو ان کا اپنے اوپر جو اعتماد ہے وہ مجھے بھال لاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، جس کی بنیاد پر وہ آج 30 سال سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، گزشتہ ویسے تو 70 سال سے ہے، لیکن جو مزاحمت کی جنگ انہوں نے لڑنا شروع کی ہے وہ 30 سال سے لڑ رہے ہیں، اور وہ اس میں مکمل طور پر مجھے لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بین الاقوامی برادری آج 50 سال بعد دوبارہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں ڈسکس کر چکی ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب ان کو اپنا یہ حق خودارادیت ملے گا۔
دلی سے کشمیری نوجوان جنید اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے عمیر کی رائے آپ نے سنی، اور اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر کی خبروں اور تازہ حالات کے بارے میں پروگرام نیم روز اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ۔
پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال اور انڈیا کے رویے کو وجہ بتاتے ہوئے انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کو پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انڈین آئین کے آرٹیکل 370 کی بحالی اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے کرفیو اٹھائے جانے تک انڈیا سے مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ امریکہ کے بعد سعودی عرب نے بھی ایران پر براہ راست اس کے تیل کی تنصیبات پر حملوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ حالیہ حملوں کے بعد سعودی عرب کے حق دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ افغانستان کے حکام کے مطابق جنوبی صوبے زبل میں ایک کار بم حملے سے 10 افراد ہلاک جبکہ 100 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں. گورنر صوبے کے گورنر کے مطابق یہ حملہ ایک ایجنسی کے اوپر کیا گیا, خفیہ ایجنسی کی بلڈنگ پہ کیا گیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.